दत्तस्य सिद्धनम् मा मृदत्तस्य सिद्धनम् मा मृदत्तस्य सिद्धनम्। हरिः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय स्वामीनारायण। ईशावास्योपनिषद। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा कृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्योपनिषद का ये पहला मंत्र और उनका प्रारंभ भी कितना दिव्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम्। दृष्टिगोचर जो कुछ भी है वो ईश अर्थात सर्वनियंता से व्याप्त है। थोड़े दिन पहले हमने थोड़ी अध्यात्म चर्चा की थी। ऋतम भरा प्रज्ञा है वही ये अतिंद्रिय तत्व को साक्षात्कार कर सकती है। दो प्रकार की ये जगत में सत्य है, एक है व्यावहारिक सत्य और दूसरा है पारमार्थिक सत्य। व्यावहारिक सत्य नाम ये जगत को देखना, देश काल वस्तु के आधार पर निर्णय करके ये सब व्यवहार करना, जैसे ये सब कुछ है ऐसा स्वीकार के ही हम देह दशा में यहां व्यवहार करते हैं। या तो ही एक बार देह से आत्मा अलग हो गई, देह से प्राण निकल गया, तो बाद में हमारे लिए ये कुछ है ही नहीं। तो कब तक ये जगत की सत्ता है? जब तक आत्मा का शरीर के साथ संबंध है तब तक हमारे लिए सब कुछ है। तो हमारी एक छोटी सी यात्रा है और यही यात्रा के मुकाम के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी यहां व्यवहार करते हैं, तो ये सबको भी हमारे शास्त्रों ने स्वीकारा है। इसलिए उनको सत्य तो बताया, असत्य नहीं कहा, किंतु नाम दिया व्यावहारिक सत्य। और दूसरा है पारमार्थिक सत्य। हम देह दशा में है या जीव दशा में, कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, कहीं भी लोक में है, फिर भी एक सत्य है जो हमेशा विद्यमान है। सत नाम होना, सत चित और आनंद जिसका धर्म है, थे है और सदा रहेंगे, ऐसा कोई तत्व है। देश काल किसी भी माध्यम के बिना जिनको स्वीकार कर सकते हैं और ऐसा कोई तत्व है तो वो है ईश। और यही उपनिषद में वो तत्व पर प्रधान विचार किया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, जो पवित्र बुद्धि है वही ये अतींद्रिय तत्व का साक्षात्कार करने में सक्षम होती है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब जगह वो तो है, परिपूर्णतया व्याप्त है, तो वो तो है, उनको तो कोई जरूरत नहीं है, है तो है, किंतु ईशावास्यम इदम सर्वम ये समझ के हमें क्या लाभ है, ये ही हमें तो देखना है। क्यों? क्योंकि है वो तो पूर्ण है, जैसे हमने अगले शांति मंत्र में बहुत विस्तार से देखा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो तो पूर्णतया सब जगह व्याप्त है ही, किंतु वो पूर्णतया सब जगह है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये पारमार्थिक यदि सत्य है और ये ज्ञान हमें हो जाता है तो हमारा बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। एक बार हमारा जुड़ाव उनके साथ हो गया तो जैसे वो परिपूर्ण है, वो तृप्त है, वैसे हम भी हो पाएंगे। तो वो ईश का, वो ब्रह्म का, वो परम तत्व परमात्मा का चिंतन करना, स्मरण करना, भजन करना, ध्यान करना, जो कुछ भी हम करते हैं वो तो सिद्ध धर्म है, वो तो है ही, किंतु ये सब हमारे लिए है। जितना ज्यादा जुड़ाव हमारा उनके साथ रहेगा उतना ही हमें आनंद मिलेगा। जैसे वृक्ष की जड़ जितनी जमीन के साथ जुड़ी रहेगी उतना ही वृक्ष हरा भरा रहेगा, फल फूल से खिलता रहेगा और अपने आप पर टिक पाएगा मजबूती से। तो वैसे हमारा आधार वो है, और जीव दशा में हम है तो अध्यात्म मार्ग में जितनी प्रक्रियाएं हमारे महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने, आर्षदृष्टा ऋषियों ने, शास्त्रों ने दी है, सभी प्रोसेस को यदि हम देखें तो वो परम तत्व से हमारा जुड़ाव कैसे हो, उनके ही लिए ये सब आध्यात्मिक व्यवस्थाएं हैं। यदि आप मंदिर में जाओ, अच्छे स्थान पे जाओ, तो भी पूरी व्यवस्था, मानो कि आप शिवालय में जाते हैं तो शिवालय में आप जाएंगे तो पहले एक घंट आएगा, साधक घंट बजाएगा, ऐसा दिव्य नाद मंदिर में होगा, तो यही नाद, इनकी झनकार, इनकी ध्वनि और उनके वाइब्रेशन ऐसे है कि वो नाद अंतर में उतरते ही जगत के बाहर के सब नाद सुनने बन हो जाएंगे। तो पहले तो ये मंदिर की ये सब व्यवस्थाएं, ये नाद हमें केंद्रित करती है। बाद में आगे जाओ, नंदी आता है, पुरुषार्थ का प्रतीक है, सब पुरुषार्थ करके भगवान के मंदिर में आओ। बाद में आगे जाओ तो कूर्म आता है, काचबा। जैसे भगवान ने गीता में द्वितीय अध्याय में सांख्य योग में कहा है, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कोई कछुआ है, काचबा, यदा संहरते चायम, विषम देश काल में सब ओर से अपने अंग को समेट लेता है। ये बहुत मधुर कल्पना है। कछुआ एक ऐसा प्राणी है कि बाहर भी अपने अंगों को निकल सकता है, वो पूरा घर अपने साथ लेके घूमता है, घर साथ में लेकर। तो वो धारे तो घर में अंदर आ जाता है और वो धारे तो बाहर हाथ पैर मुंह निकाल के चल भी सकता है। तो यदि कोई विषमता आई तो अपने पूरे अंगों को वो कछुआ जैसे समेट लेता है। तो मंदिर में जाके ये कछुआ प्रतीक है कि पूरे हमारे इंद्रियों अंतःकरण की जो वृत्तियां है, जो विषम देश काल से हमें समेट लेनी है और एकाग्र करनी है, और तभी आगे जाके भगवान भोलानाथ महादेव का लिंग आता है। लिंग ऐसा राउंड शेप है, ऑल शेप है, और यूनिवर्स की जैसी आकृति है ऐसी ही आकृति है, पूर्णता का प्रतीक है, लीनता का प्रतीक है। देखो ये सब व्यवस्थाएं क्या है, तो कि कैसे हम वो परम तत्व के साथ जुड़े और जगत से दूर हो जाए। तो पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था है ये तत्व के साथ जुड़ने के लिए ही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब का प्रयोजन ये है। मानो कि हम मंत्रनाद करते हैं, कई प्रकार के मंत्र अलग अलग ये पूरे विश्व में है, किंतु एक बात तो है, विश्व का कोई भी धर्म ले लो और कोई भी संप्रदाय ले लो, जगत के बारे में, जीव के बारे में या परमात्मा के बारे में यदि ये सब को भिन्न भिन्न राय है, सबके भिन्न भिन्न मत है, फिर तो कहीं, फिर भी कहीं तो ऐसी साम्यता है कि जहां सब आके एक साथ जुड़ जाते हैं, और उनमें भी एक ऐसा है मंत्र। सभी संप्रदायों में, धर्मों में, इस्लाम में भी, बौद्ध ले लो, जैन ले लो, हिंदू धर्म में तो है ही, किंतु कोई ना कोई अलग अलग मंत्र है। मनना तत्रायते इति मंत्रः, मंत्र क्या करता है, जिनका मनन, जिनका चिंतन, जिनका आवर्तन करते 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 हमारी सभी वृत्तियां वो मंत्र में एकाग्र हो जाती है, स्थिर हो जाती है, लीन हो जाती है, और जिसका मनन, जिसका आवर्तन, जिनका जिनका ये जो गुणगान है वही एक शक्ति अर्जित कर देता है, कहीं ऐसी जगह पे लाके हमें एकाग्र कर देता है, स्थिर कर देता है। और ये एकाग्रता का प्रयोजन क्या है, तो कि दूसरा सब कुछ सुनाई देना, दूसरा कुछ सब कुछ हमारे लिए अदृश्य हो जाता है और हमारी सब वृत्तियां ये मंत्र में एकाग्र होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये जो शुभ मंत्र है और मंत्र में जो उनके आभ्यंतर प्रयत्न है, उनका जो महाप्राण है, उनका उच्चारण है, नाभि से, कंठ से, जिस प्रकार से होता है, तो हमारी अंतर इनर इंजीनियरिंग भी उनके साथ ही सब बनने लगती है। मंत्र ले लो, ऐसे कोई भी साधन ले लो, कहीं ना कहीं सभी धर्मों और शास्त्रों ने ये जो साधन बताए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वृत्तियां को एकाग्र करने के लिए, और एकाग्र की हुई वृत्तियां को परम तत्व, परब्रह्म, परमात्मा उनमें जोड़ने के लिए किया गया है। जैसे ध्यान ले लो, ध्यान क्या है, अस्तित्व का जो आधार है वो परम तत्व है, जहां से पूरी चेतना आती है, तो वही चेतना का जो स्रोत है, मूल है, उनके साथ जुड़ाव करने के लिए ही तो ध्यान है। यही ध्यान हमें मूल में जोड़ता है, और इसीलिए कठोपनिषद में एक बहुत सुंदर श्रुति आती है, परांचिकानि व्यतृणत स्वयंभू तस्माद्, परांचिकानि व्यतृणत स्वयंभू, भगवान ने ये इंद्रिया को ऐसी बनाई, परांची खानी, खानी नाम इंद्रियाणी। इंद्रिया क्या है? हमारी आंख, हमारे नाक, हमारी जिह्वा, हाथ पैर, ये जो पंच कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है, जिसके द्वारा हम विषयों का उपभोग करते हैं, स्मेल लेना, टेस्ट लेना, ये सब करते हैं। तो ये इंद्रियों का स्वभाव परमात्मा ने कैसा बनाया? परांची खानी, परान अर्थान प्रति अंचति, जो बाहर के तत्व है, बाहर के विषय है, पदार्थ है, उनको ही प्रकाशित करती है। इनका स्वभाव ही ऐसा बनाया। जैसे कोई बैटरी टॉर्च ले ले, और अच्छी टॉर्च होगी तो शायद 1, 2, 3, 5 किलोमीटर तक वो दूर प्रकाश कर सकती है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, इतना दूर प्रकाशित कर सकती है। किंतु वो बैटरी की लाइट जो है, उनके पीछे 1 सेंटीमीटर जो क्या है, वहां तो अंधेरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा बनाया है। तो परांच खानी, और इंद्रियों को पर अर्थ प्रकाश करने वाली बनाकर मुमुक्षु भगवान को कहते हैं, कहता है कि हे प्रभु व्यतृणत, आपने तो मानो प्रभु ये जीव के सामर्थ्य को, शक्ति को व्यतृणत खत्म ही कर दिया। कितना शक्तिशाली ये जीव है, कितना उनमें सामर्थ्य है, किंतु इंद्रिया ही ऐसी बना दी प्रभु आपने कि बाहर ही दौड़ती है, बाहर ही दौड़ती है, और वही इंद्रिया पूरे जीव को खींच के ले जाती है। नहीं खाना है तो भी खिला देती है, रास्ते से निकले और पाव भाजी की जो भी कुछ पसंद है, और ऐसी बढ़िया सुगंध आती है, और नासिका के ऊपर वो सुगंध गई तो गाड़ी रुक जाती है, पार्किंग में खड़ी हो जाती है, हम भी अंदर चले जाते हैं, भैया ये कौन सी सुगंध है, ये है, अच्छा मुझे एक प्लेट दे दो। कहीं और कुछ और करने के लिए हमारे रास्ते में जा रहे थे, किंतु ये नासिका ने खींच लिया, नहीं देखना तो भी आंख ने खींच लिया, और वहां से कितनी यात्राएं और यातनाएं प्रारंभ होती है। देख लो, एक अशुभ दृश्य, एक अशुभ विचार, वहां से यदि हम नहीं रुके तो वहां से पूरी अशुभता की भरमार शुरू हो जाती है। तो यह दोष किसका? देखो, इंद्रियों ने एक बार खींच लिया तो बाद में सब कुछ पूरा हो जाता है, बाद में पश्चाताप का झरना मानो अंदर से फूट जाता, अरे ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ये तो गलत है, शास्त्र भी ना बोलते हैं। सब ज्ञान प्रकट हो जाता है, पहले कुछ ज्ञान नहीं प्रकट होता है, और सब पूरा हो जाने के बाद सब ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो बाद में जो आवर्तन है, धक्का है, वो तो हमारे हाथ की बात नहीं है, किंतु उनको पहले रोक लेना वो हमारे हाथ की बात है। किंतु इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा बनाया है कि इंद्रियां बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर में खींच के ले जाती है। इसलिए मुमुक्षु ने बोला कि परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, हे प्रभु आपने पर अर्थ को प्रकाश करने वाली ये इंद्रिया बना के जीव के सामर्थ्य को मानो नष्ट कर दिया। और बाद में श्रुति में ऐसा लिखा कि कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। कोई ऐसा धीर, कोई ऐसा विरला होता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। गीता में भगवान ने कहा कि सहस्रेशु, लाखों मुमुक्षुओं में कश्चिद् यतति सिद्धये, लाखों में कोई एक होता है वो ये अध्यात्म मार्ग में चलने का विचार करता है, लाखों में एक। और ऐसे एक एक को चुन लो तो वैसे लाखों यदि एकत्रित करो तो उनमें से कोई एक ऐसा मिलता है कि जो ये मार्ग में चलने का सामर्थ्य और साहस जुटा सके। बाद में भगवान ने लिखा कि यततामपि सिद्धानम, और ऐसे लाखों ले लो कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, ऐसे लाखों में भी मुझे तो मैं जैसा हूं ऐसा तो कोई विरला ही जान सकता है। देखो कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है। तो हमारा कुछ ऐसा तो प्रारंभ हो गया है कि आज लाखों जीव विषय भोग में लुब्ध है, अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, और ये जगत का चिंतन विषय भोग यही सब कुछ है ऐसा मान के लग गए हैं। और आज हम ही ऐसा कुछ श्रवण कर रहे हैं तो हमारी अंदर की मुमुक्षुता ही दिखाती है कि ये वैसे करोड़ों में से हम चुने गए कोई एक है। अब हमारी यही कसौटी है कि ऐसे भी करोड़ों होते हैं उनमें से कोई ही भगवान को, कोई ही ये परम तत्व को जान सकते हैं। बस हमें वहां पहुंचना है, वो हमारा ध्येय। 4 दिन पहले रिजल्ट आया पूरे भारत का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सीए का 6% रिजल्ट आया। लाखों विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, ओनली 6%, तो भी ये तो बहुत ज्यादा है। सरकार की नीतियां जीएसटी और कुछ ऐसी बन रही है तो अब ये एक फील्ड की भी आज बहुत डिमांड है, तो 6% तो बहुत ज्यादा रिजल्ट है, किंतु ये मार्ग में तो कश्चिद 0.1% है। तो 0.1% रिजल्ट है ऐसा सुन के हमें डर नहीं जाना है। अरे अरे कोई पास नहीं होता क्या करेंगे, अब तो ये सब प्रयास करना ही व्यर्थ है, छोड़ दो। अरे ऐसा नहीं है, जितना रिजल्ट कम उतनी वैल्यू ज्यादा है। एक बार इनमें पास हो गए तो इनकी वैल्यू ही इतनी बड़ी है तो इनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। और दूसरा कि जगत के मार्ग में ऐसा है, संसार दशा में कितना भी करो किंतु यदि आप फाइनल एग्जाम में, फाइनल गेम में, कहीं पर भी फाइनल में यदि आप फेल हो गए तो आगे की आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किंतु अध्यात्म मार्ग में ऐसा नहीं है। नेहा भिक्रम नाशोस्ति, गीता में भगवान ने कहा इह नाम, ये मार्ग अर्जुन ऐसा है कि अभिक्रम न नाशो अस्ति, ये मार्ग में एक पगला भी रखा और आगे कुछ ना कर पाया यदि अर्जुन तुम, फिर भी न अभिक्रम नाशोस्ति, थोड़ा भी चले हो तो भी उनका नाश नहीं होता है, वो रहता ही है, रहता ही है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, यदि ये नहीं हुआ तो अगले जन्म में ये काम आएगा और वहां से आगे की यात्रा करने का तुम्हें अवसर मिलेगा। फिर भी नहीं हुआ तो ये सब सत्य के मार्ग पर जो भी किया है वो सब रहेगा, बढ़ता ही जाएगा, दिन दिन बढ़त सवायो, ऐसा मीराबाई ने तो कहा है, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, कि ये तो दिन दिन बढ़ता ही जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय में हमारे निष्कुलानंद स्वामी हुए और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उनका नाम है भक्ति निधि। भक्ति निधि, भक्ति है वो निधि है, खजाना है। और उनको उपमा दी सुवर्ण के कलश की।
भक्ति उपर भय शानो रे संतो, भक्ति उपर भय शानो, हे तूटो तो या कलश सोनानो रे संतो, भक्ति उपर भय शानो। यदि ये भक्ति का कलश, ये सुवर्ण का कलश उनकी उपमा दी गई, और एक ऐसा कलश है यदि ये टूट गया तो भी कलश सोना का, यदि सोने का कलश है और टूट जाता है
तो वो कलश बनाने के लिए जो सुने सुनार को कलश घड़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो हमारे पैसे जाते हैं, किंतु वो कलश का मूल्य, उनकी कीमत कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो सोने का है। दूसरी बार भी वही सोने से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये अध्यात्म मार्ग है, ये सोने जैसा है। जितना करो एकत्रित होता जाता है, बढ़ता जाता है, कभी नाश नहीं होता, और जितना किया वो रहता है। और इसीलिए बहुत कम रिजल्ट शायद मिलेगा, किंतु ये बार नहीं तो अगली बार, आज नहीं तो कल, ये साल नहीं तो अगले साल, किंतु होगा होगा और होगा ही। जिस मार्ग में पगले रखने के पैर रखने के बाद कभी पीछे मुड़ना ही ना पड़े, ऐसा कोई मार्ग है तो यह अध्यात्म का मार्ग है। बहुत अच्छा है, किंतु प्रारंभ में श्रद्धा रखनी पड़ती है। और इसीलिए उपनिषद ने बोला कि जीव की इंद्रियों की वृत्ति ही ऐसी है, बाहर ही चलती है, किंतु कश्चिदि धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कोई ऐसा विरला है वो क्या करता है, आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्, वो अपने चक्षु को, आंखें को मूंदता है, बंद कर देता है। ये खुली है और ये बंद आंख है। ये बंद आंख करना ये कोई साधारण घटना नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे अभी अभी उठे हैं, 7 घंटे तो आंखें बंद ही थी, तब ये बंद करना ये क्या है, बंद तो करते ही है, किंतु वो तमो गुण से, अज्ञान दशा से, सुषुप्ति में बंद करते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं। ज्ञान के साथ यही आंखें को बंद करना आ गया। बंद करना मतलब कि अपनी वृत्तियां को पीछे की ओर मुड़ाना, मूल की ओर जाना, बहुत चमत्कार जीवन में होने लगेंगे, बहुत चमत्कार। कश्चित धीरः, कोई ऐसा धीर धैर्यवान पुरुष है, प्रत्यगात्मानमैक्षत, स्वयं प्रकाश, ऐसे आत्मा और परमात्मा को देखने के लिए अपनी आंखें को बूंदता है, बंद करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आंखें बंद करना, अंतर्दृष्टि करना, ये भी क्या है? तो ये जो आधार है, मूल है, वहां हमारी वृत्तियां को पहुंचाना कैसे है, उनके लिए है। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो अणु अणु में व्याप्त है परमात्मा, वो कैसे दिखे? तो उनके लिए ये जो पूरा ध्यान, अध्यात्म, मंत्र और शास्त्र, धर्म और संप्रदाय से हमें जो रीति नीति प्राप्त होती है, तो उनके मार्ग पे यदि चलते रहे, सच्चे निमित्तों में जुड़े रहे और गलत निमित्तों से दूर होते गए, तो धीरे धीरे वो जो ये ईशावास्यम इदम सर्वम है, अणु अणु में ये परम तत्व परमात्मा व्याप्त है, वो भी हमें दिखाई पड़ेंगे, है ही। और ऋषि नाम क्या, हमने जैसे पहले बोला था कि ये जो अस्तित्व का आधार है, उनके साथ जुड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, उनके लिए जो करना है वो करे, जो छोड़ना है छोड़े, वही ऋषि है। जरूर नहीं कि सबको दाढ़ी और सर पे जटा होनी ही चाहिए, जरूर नहीं कि ये सब छोड़ के हमें जंगल में चले जाना ही पड़ेगा, जरूर नहीं कि पेड़ पत्ते और कंद मूल फल ही खाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो ऋषि की व्याख्या है। नहीं, ऋषि नाम ये सब वो क्यों करता है? क्योंकि हमारी अध्यात्म यात्रा में ये सब बाधा रूप ना बने। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्, अंतर में राग है और यदि वन में चले गए तो भी वनेपि दोषाः प्रभवन्ति, वन में भी बहुत दोष है, वहां भी पूरा संसार आपके साथ आएगा। क्यों? क्योंकि संसार तो पूरा अंदर है। और निवृत्त तृष्णस्य गृहं तपोवनम्, यदि तृष्णा निवृत्त हो गई है, अंतर से तृष्णा शांत हो गई है, तो गृहं तपोवनम्, ये हरे भरे संसार के बीच में रहेंगे तो भी वो तपोवन बन जाएगा। यही रहस्य है, वहां भी तपोवन बन जाएगा। निवृत्त तृष्णस्य गृहं तपोवनम्। और इसलिए साधु की व्याख्या रामायण में तुलसीदास जी ने क्या की, साधु चरित शुभ सरीस कपासु। साधु को, ऋषि को कपास की, कारपास की उपमा दी गई, कॉटन जिनसे बनता है वो कपास, कपास उनकी विशेषता क्या है? देखो, जब कारपास पाक पे आ जाता है रुई, तो उनका छोड़ पूरा सूख जाता है। पहले तो वो कपास, कारपास तैयार होता है तो भी एक विलक्षणता है कि छोड़ पूरा हरा भरा रहता है, और हरे भरे संसार में भी वो कपास, कारपास है, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। सब हरा भरा किंतु वो कारपास है, वो अंदर से सूखा है। देखो दूसरी बात, कितना धवल है, श्वेत है, कोई भी दोष उनमें नहीं है, इतना हल्का सा है। तो यही तो विशेषता है। तो ऋषि नाम क्या? पूरा संसार छोड़ के जंगल में चला जाए ये तो ऋषि है, सर पे जटा दाढ़ी बढ़ाए वो तो ऋषि है, फल फूल कंद मूल खाए वो तो ऋषि है, घर बार का त्याग कर दे वो तो ऋषि है, किंतु ऋषि का जो कोई असाधारण लक्षण है तो वो तो ये है कि अपनी अध्यात्म यात्रा में जो जो बाधा रूप है उनको छोड़ता जाए वो ऋषि है, वो परम तत्व परमात्मा ये पूरे जगत में व्याप्त है, वास्य है, और उनके साथ वो जुड़ाव करने के लिए जो कुछ भी बाधा रूप है वो छोड़ता रहे और उनके साथ लय प्राप्त करता रहे वो ऋषि है। आज हमें घर छोड़ने की, पद वस्तु पदार्थ छोड़ने की, कंद मूल खाने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषित्व क्या है? तो कि उनके साथ हमारा जुड़ाव कैसे हो, बस यही सोचना है। और वो जुड़ाव में क्या क्या बाधा रूप है उनको देखना है, उनको पहचानना है, समझना है, और धीरे 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 उनको भी समझने के बाद धीरे धीरे उनको भी छोड़ना है। एक बार उनका स्वभाव क्या है ये हमें पता चल गया तो बाद में उनको छोड़ना भी बहुत आसान हो जाएगा, पहले तो उनको पहचानना जरूरी है। तो यही ऋषित्व है। और ये ऋषि सतत, ये कॉस्मोस एनर्जी है, परम तत्व परमात्मा है, उनके साथ संवादिता साधता रहे साधता रहे, उनके लिए मुनि, मुनि मननशील है वो मुनि है, ध्यानशील है वो ध्यानी है। देखो किंतु ये क्यों है? तो कि उनके साथ जुड़ाव करने के लिए जो यतमान है वही ऋषि है, वही योगी है, वही मुनि है, वही ध्यानी है, वही भक्त है। तो इसीलिए ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सर्व ईश से व्याप्त है, अणु अणु में वो ईश परमात्मा है, वो तो है, वो तो पूर्ण है, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो सिद्ध धर्म है। किंतु ये सब चिंतन किस लिए है? क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। एक बार हम उनके साथ जुड़ गए और हमारा वो तत्व के साथ जुड़ाव हो गया तो जैसे वो अनंत है वैसी अनंतता हमारे अंदर भी आ जाएगी। और इसीलिए उपनिषदों में जीवात्मा और परमात्मा के जो धर्म बताए हैं वो दोनों समान बताए हैं। कहीं कंफ्यूजन तो इसलिए ही हो जाता है शास्त्रों में। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विजिगित्सो अपिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। ये जो गुणाष्टक परमात्मा का बताया गया है तो यही धर्म जीवात्मा के बताए गए हैं, किंतु संसार दशा में ये जीव के धर्म है वो कोई प्रकाशित नहीं है। और ईश उपासना से, ब्रह्मोपासना से, भगवत स्वरूप के ध्यान मनन चिंतन और उपासना से जीव की जीव दशा ही खत्म हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जैसे भगवान के धर्म है वैसे धर्म जीव को सब अपने आप में भास, अपने आप में अनुभूत होने लगते हैं। और वही चतुर्धा मुक्ति गीता ने भी बताई है, सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य, ये ब्रह्म तत्व के समान लोक को प्राप्त हो जाना। सारष्टि, जैसा भगवान में ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य जीव को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त को प्राप्त हो जाता है। सारूप्य, उनके जैसा रूप प्राप्त हो जाता है, उनका ही अखंड सामीप्य प्राप्त हो जाता है। तो ये सबका मूल है परम तत्व परमात्मा की उपासना। तो उपासना का प्रारंभ कहां से होगा? वो परम तत्व परमात्मा के स्वीकार से। कोई तो है यदि ऐसा हमारे अंदर, पहले हमारे अंदर स्वीकार होगा तभी तो उपासना का प्रारंभ होगा। और इसीलिए उपनिषद प्रारंभ ही यहां से करता है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये सब उपासना करके हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, जैसे एक रडार यंत्र को तैयार करना है। क्या रडार? मानो कि कोई भी यंत्र ले लो, आपके घर में टेलीविजन है और टेरेस पर जो टेलीविजन का जो एंटेना है उनको तैयार करना है, बस उनके स्थान पर हमें अपने आप को रख देना है। यूनिवर्स में और वातावरण में तो सभी प्रकार के तरंग है, सभी प्रकार के तरंग है। आपको कोई भी चैनल देखनी है तो उनके तरंग आकाश में है, किंतु आपका एंटेना यदि खराब है तो वो तरंग को नहीं पकड़ पाएगा, और वो नहीं पकड़ पाएगा इसलिए वो दृश्य को टेलीविजन में नहीं दिखा पाएगा। यदि ये जो यंत्र है वो पावरफुल बन गया तो आप जो चाहो वैसे तरंग को यही सृष्टि से पकड़ पाओगे। और देखो इनमें भी बहुत अच्छी बात है, जो हम हाथ में रिमोट लेकर टीवी में बटन दबाते हैं और चैनल बदलती है, चैनल बदलती है, दृश्य भी बदलते बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, तो उनके पीछे साइंस क्या है? क्या साइंस है? कि आप चैनल बदल के आपका जो यंत्र है, एंटेना है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेट चेंज करते हो। तो जैसे फ्रीक्वेंसी वो एंटेना की बनती है तो वो फ्रीक्वेंसी के अनुरूप जैसे जैसे जितने भी तरंग वातावरण में है वो सब तरंग को वो एंटेना पकड़ने लगेगा और आपके टेलीविजन में दिखाने लगेगा। वातावरण में सभी प्रकार के तरंग है, आप जैसी फ्रीक्वेंसी एंटेना की सेट करोगे वैसी फ्रीक्वेंसी के तरंग वो पकड़ के आपको दिखा देगा। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये उपासना करते करते हमारा ये यंत्र ऐसा पावरफुल हो जाएगा, हम इतने पॉजिटिव बन जाएंगे, हमारे अंदर ऐसी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं है तो अपने आप हमारे साथ जुड़ने लगेगी। अपने आप संकल्प करो और पूरी सृष्टि में ऐसा वातावरण बनना प्रारंभ हो जाएगा। आप कुछ अच्छा ध्येय लेके निकल पड़ो तो उनके लिए जो जो भी व्यक्ति साधन उपलब्धियां की जरूरत है वो सब बनता जाएगा। ये ब्रह्मांड में आपके लिए जितनी अच्छाइयां है वो आप सब अच्छाइयां अपने आप आपके साथ बनने लगेगी। किंतु कब? तो कि अस्तित्व का जो आधार है उनके साथ यदि आपका जुड़ाव हुआ तो। और इसलिए हमने टैगलाइन में ही लिखा है कि अस्तित्व का उत्सव ईशावासी उपनिषद। एक बार ये ईश कैसे ये जगत में व्याप्त है, वास्य है और वो कैसे कार्य करता है, एक बार ये रहस्य में हमारी दृष्टि पहुंच गई और उनके साथ हमारा जुड़ाव हो गया तो हमारे लिए पूरा अस्तित्व उत्सव बन जाएगा। 2400 घंटों हम उत्सव में ही रहेंगे। और एक बात है कि उत्सव कहां होता है, मानो अभी हम सुरेंद्रनगर जिले में, गुजरात में, उत्तर गुजरात में वरणिंद्र धाम पाटड़ी है, बहुत बड़ा मंदिर है, नीलकंठ धाम से भी बड़ा मंदिर है, आप YouTube में सर्च करना, यहां मंगल महोत्सव बहुत बड़ा कल से शुरू होने वाला है। तो हम यहां आए हैं, तो ये जो उत्सव है ये क्या है, उत्सव कहां होता है, बड़े चौगान में, मंदिर में, बाहर हजारों लोगों के बीच, बराबर है, ये तो सब उपलब्धियां है, उत्सव तो अंदर होता है, बाहर सब कुछ हो गया किंतु उनके साथ हमारा कोई जुड़ाव ही नहीं, उसमें कुछ हमें इंटरेस्ट ही नहीं, हमारा मन मन का कुछ लगाव ही नहीं, तो बाहर कुछ ना कितना भी करो आपके लिए वो उत्सव है ही नहीं। और कुछ भी नहीं है किंतु कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, केवल चार अंगुल की कौपीन है तो भी खलु भाग्यवंत, पूरे विश्व में सबसे आनंदित वो ऋषि है, प्रत्येक क्षण वो उत्सव में है। तो उत्सव हमें कहां करना है, अंदर ही तो करना है। कितने दिन तक करना है, निरंतर करना है, तो निरंतर उत्सव करना है और आनंद के सागर में झीलना है, तो उनके लिए ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये परमात्मा की सत्ता को स्वीकारना, और स्वीकारने के बाद उनके साथ हम कैसे जुड़े, उनके लिए सतत यत्नशील रहना, यह बहुत जरूरी है। और इसीलिए ब्रह्म का उपदेश सीधा यह उपनिषद करता है, इसलिए उपनिषद का नाम ब्रह्मोपनिषद भी कहा जाता है। तो ऐसा बहुत अच्छा मंत्र ईशावास्योपनिषद, वो ब्रह्म तो पूर्ण है, परिपूर्ण है, स्वयं महिमनी प्रतिष्ठित, उनको कुछ जरूरत नहीं है, किंतु हमारा उनके साथ जुड़ाव हो गया तो उनकी तरह हम भी अनंत बन जाएंगे। जो कुछ जरूरत है वो हमें है, तो वो कैसे यात्रा करनी है, उनके लिए कैसा कर्म योग चाहिए, उनके लिए कैसा सात्विक जीवन चाहिए, ये सब एक एक मंत्र में क्रमशः ये उपनिषद एक बालक को जैसे माँ बहुत प्रेम और लाड से समझाती है ऐसा समझाती है, तो वो क्रमशः हम देखते जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रहेंगे रखेंगे। अस्तु, जय स्वामी नारायण।